بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مغرب کی عائد کردہ پابندیاں اور ایران کی ایٹمی پیش رفت۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، منگل 9 اپریل کو ایران میں ایٹمی ٹیکنالوجی کا قومی دن منایا گیا۔ اس مناسبت سے ایک تقریب سے خطاب میں صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا ہے کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی پیش رفت ہر حال میں جاری رہے گی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ گروپ 5+1 کو نصیحت کی کہ ایران کے ساتھ تعاون کا راستہ اختیار کرے اور اس کے مسلمہ ایٹمی حقوق کو تسلیم کرے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ایٹمی میدان میں ایران کی پیش رفت نہیں روک سکتی۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کا حق تمام اقوام کو حاصل ہے، اور دنیا کی سبھی اقوام کو ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس تقریب سے خطاب میں ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ ڈاکٹر فریدون عباسی نے گزشتہ 1 سال کے دوران ایٹمی میدان میں ایران کی پیش رفت سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر خاص طور پر نیوکلیئر میڈیسن سے متعلق متعدد نئی پروڈکٹس پیش کی گئی اور چند نئے پرامن ایٹمی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ 1 سال کے اندر ایران کی ایٹمی پیش رفت کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس بات پر بھی گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی بنا پر امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی تمام تر سختیوں اور پابندیوں کے باوجود ایٹمی میدان میں ایران کی پیش رفت و ترقی کا سلسلہ جاری ہے۔ ساری دنیا اور گروپ 5+1، خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، اور وہ ایرانی قوم کو کسی بھی قیمت پر ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استفادے سے نہیں روک سکتے، تو پھر وہ اپنے غیر معقول موقف پر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، اور پابندیوں کے غیر مؤثر ہونے کے باوجود انہوں نے اس کا سلسلہ کیوں جاری رکھا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا پرامن استعمال اس کے فوجی استعمال سے بہت زیادہ ہے، جہاں اس کا فوجی استعمال بنی نوع انسان کی تباہی کے اسباب فراہم کرتا ہے، وہیں پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال سے بنی نوع انسان کو انواع و اقسام کے مسائل اور مہلک بیماریوں سے نجات دلانے کے ساتھ ہی مثبت انسانی ترقی اور پیش رفت کے راستے کھولے جا سکتے ہیں، تو پھر ساری دنیا اس کے فوجی استعمال کی مخالفت اور پرامن استعمال کی حمایت پر متفق کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے تہران اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر اور معروف تجزیہ نگار حسین کنانی مقدم صاحب کو، جو اب سے تھوڑی دیر بعد پہنچنے ہی والے ہیں۔ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے اس مذاکرے میں حصہ لیں گے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار عمر ریاض عباسی صاحب، اور دہلی اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں شرکت کریں گے پروفیسر تلسی رام صاحب۔ تو آئیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار عمر ریاض عباسی صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عباسی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
عباسی صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے فوائد کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا، इस पे आज से 3 साल पहले मैं अपने उस रिसर्च पेपर का हवाला दूंगा जो मैंने डॉन के अंदर लिखा था। पाकिस्तान का एक क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, उसमें छपा था कि एटॉमिक टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग और कर्स, कि ये रहमत है या जहमत है। दोनों पहलुओं पर हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स पर देखना होगा। तो निचोड़ जो निकलता है, जितनी भी आज तक टेक्नोलॉजिकल सिस्टमैटिकल जो टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हुए, इसके यूजेज और इस्तेमाल को देखते हुए, 80% एटमी टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लेसिंग है, रहमत है, और उसमें बेनिफिट्स हैं कॉमन मैन के लिए, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए, और खुशहाली और पीसफुल एक स्ट्रक्चर के लिए। 20% इसके अंदर डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर है, जिसमें तबाही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने, इस दुनिया ने और दुनिया के बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं, उन्होंने एटमी टेक्नोलॉजी का जो असल वियन था, जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो इसके पीसफुल ऑब्जेक्टिव थे, उसको दुनिया के सामने उजागर नहीं किया, और इसका आगाज़ ही डिस्ट्रक्शन से किया, जैसे हिरोशिमा, नागासाकी और दीगर इवेंट्स में अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो है वो अपनी डिस्ट्रक्शन का मुजाहरा करते रहे। तो एक पब्लिक परसेप्शन एटमी टेक्नोलॉजी की मैं आपसे शेयर करूं, वो बनी हुई है तबाही की, जो कि सरासर गलत है, और इसे हम गलतुल आम कह सकते हैं। अब आइए ज़रा इसकी ब्लेसिंग्स की तरफ। आज दुनिया के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल, उनसे इस्तेफादा कमा हक हो एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल के बगैर मुमकिन नहीं रहा। ये मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ आपसे।
जी
उस नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो खाम चीज़ें हैं, जो खाम माल है, उसको प्रॉपरली तैयार करके मफाद आमा के ताबे लाना, जिससे आम आदमी इस्तेफादा कर सके, उसमें आपकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसमें आपके मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मादनी ज़खायर हैं, और इसी तरह मेडिकल एड है, मेडिकल यूनिट है। तो इंसानियत को चाहे तिब्बी इमदाद दी जाए, चाहे उसे इन्वायरमेंटल जो है एक फैसिलिटी सहूलत फराहम की जाए, चाहे इंसानियत को लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, जितनी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो एटमी टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं है। हाँ, अब ये स्टांस ये है कि ईरान इस पर ज़्यादा जोर क्यों दे रहा है, अब ये बड़ी समझने वाली बात है। डॉक्टर महमूद अहमदीनेजाद भी, आयतुल्ला अली खामेनेई भी, और ईरान के एटमी प्रोग्राम के हेड भी ये बात कर रहे हैं कि पुरामन टेक्नोलॉजी हमारा हक है। प्रॉब्लम ये है कि ईरान चाहता है कि वो खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर खड़ा रहे, यानी एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल को पुरामन मकासद के लिए इस्तेमाल करे, वो अपनी मेडिसन्स बनाए, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, वो अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाए, ताकि दुनिया पर उसका इन्हिसार न रहे। अमेरिका को प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान पुरामन टेक्नोलॉजी के हुसूल में कामयाब हो गया और इसे मेडिकल यूनिट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर इसने इस्तेमाल कर लिया, तो दुनिया का शायद पहला और सबसे बड़ा मुल्क बन जाए कि जो पीसफुल ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो अच्छे तरीके से एटमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जान के काबिल बन सके। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो आपके G5+1 जो जितने भी ममालिक हैं, और इसके अलावा जितनी बड़ी एटमी ताकतें हैं, उनकी निगाहें मरकूज हैं, और इसमें अमेरिका और इसराइल मीडिया प्रोपिगेशन के जरिए मिस प्रोपिगेट कर रहे हैं और मिस हैंडलिंग कर रहे हैं। अभी मुझे बताएं, क्राइटेरिया एक होना चाहिए, नॉर्थ कोरिया के साथ खुफिया मुदाकरात तो करता है अमेरिका, अभी पिछले हफ्ते हुए हैं न्यूयॉर्क के अंदर, वो उनके कम्युनिकेशनल ग्रुप के तहत हुए, तो जहां कोई डंडे के जोर पे बात करे वहां वो कारपेट हो जाता है, उसे पता है कि खित्ते में डिसस्टेबिलिटी हो जाती है। तो यहां पे ईरान जैसा मुल्क जो पीसफुल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बात करे, तो उसको मीडिया के जरिए, मीडिया वॉर के जरिए टैकल करना, मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। लेकिन ईरानियन स्टांस जो है वो अपनी जगह पे एक स्टांस है, कंटेंट है, वो थ्योरी है, वो रियलिटी है, और दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि ईरान वो वाहिद मुल्क है जो इसको रहमत के तौर पर पेश कर रहा है और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
जी अब्बासी साहब, अब दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि IAEA और NPT का बुनियादी मकसद और हदफ क्या है?
देखिए, दो अलग अलग इदारे हैं, एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है और एक है नॉन प्रोलिफिरेशन ट्रीटी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है, उसका मतलब है रूल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को तय करना। अब उसके जब आप चार्टर देखें, तो उसके चार्टर के क्लॉज 4 के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी मुल्क पुरामन मकासद के लिए और फलाए आमा के लिए एटमी टेक्नोलॉजी को हासिल करने का हक रखता है, और ये सबके लिए है। दूसरी बात मैं जो आपसे शेयर करूं, नॉन प्रोलिफिरेशन ट्रीटी का मतलब यह है कि कोई भी मुल्क एटमी अदम फैलाव का पाबंद होगा और गैर कानूनी इस्तेमाल पर जो दूसरे मुल्क को जैसे टेक्नोलॉजी मुंतकिल की जाती है वो अगर उस पर साबित हो गई तो उस पर चार्जेस लगेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पहला क्लॉज जो आईएई का क्लॉज नंबर 4 है उसके तहत तो ईरान पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका इनाग्रेशन किया है डॉक्टर महमूद अहमदी नय्याद ने? मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें पिछले एक साल में कि जो तबाही फैलाने वाला हो इस एटमी टेक्नोलॉजी के तहत। नहीं, वो सारे प्रोजेक्ट रफाए आमा के हैं, वो सारे प्रोजेक्ट रिफॉर्मेशन के हैं, फलाए आमा के हैं, कोई मेडिसिन का है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज का है, वो सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आम आदमी की फलाह है, जिसमें रहमत है, जिसमें लोगों की खुशहाली है, जिसमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल है। तो अमेरिका को यही खटकता है, क्या प्रॉब्लम है पूरी दुनिया को कि जहां पे इंसानों की फलाह के प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप कह रहे हैं कि जी ये एटमी ताकत का हुसूल गलत है? भाई आपने गलत इस्तेमाल किया है तो ईरान तो दुरुस्त इस्तेमाल कर रहा है, आपको लेसन लेना चाहिए ईरान से कि एटमी टेक्नोलॉजी का 80% दुरुस्त इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे आ जाएं, उस मूवमेंट का काम है कि एटमी अदम फैलाओ यानी एटमी फैलाओ को रोकना। मुझे बताएं ईरान ने कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है? यूरेनियम की अफजूदगी वो कर ही नहीं रहा, और जिस हद तक वो एटमी टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है वो अपने रिसोर्सेज को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। तो दोनों इदारों के ऑब्जेक्टिव्स के तहत ईरान अपनी डायरेक्शन में, गाइडलाइन में, एक गैर जानिबदार तज्जिया निगार की हैसियत से चैलेंज के तौर पर कह रहा हूं वो अपने पैरामीटर्स में रह के काम कर रहा है, और अगर टेबल पर बात होगी तो पूरी दुनिया शिकस्त खा सकती है। ईरान का किस्सा और ईरान का केस और ईरान का पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पूरी दुनिया के फोरम में किसी जगह भी चैलेंज नहीं किया जा सकता।
जी अब्बासी साहब, अब तीसरा सवाल मेरा यह है कि एक हदफ एनपीटी और आईएईए का यह है कि एटमी असलहे का फैलाव रोका जाए, और दूसरा हदफ यह है कि एटमी तवानाई का पुरअमन इस्तेमाल बढ़ाया जाए, उसके फरोख के असबाब बढ़ाए फराहम किए जाएं, और जो ममालिक एनपीटी के रुकन हों, उनके पाबंद हों, उनको भरपूर तआवुन दिया जाए पुराने एटमी टेक्नोलॉजी के फरोग में। इस सिलसिले में कितना काम हुआ है आलमी सतह पर?
देखें, मेरे ख्याल में जो कुछ चार्टर के अंदर लिखा हुआ है, आप यूएनओ के चार्टर उठा लें या आईएई का या एनपीटी का, जिनके जितने भी चार्टर्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे यूएनओ के चार्टर में आप मिसाल ले लें कि दुनिया में कयाम अमन के लिए यूएनओ कायम की गई। आज दुनिया में अमन की हालत देख लें और यूएनओ की रेजोल्यूशंस उठा लें, ऐसा लगता है कि यूएनओ के नज़दीक तो पूरी दुनिया में मकसद ही सिर्फ अमन कायम करना है, लेकिन वो यूनियन ऑफ न्यूक्लियर ऑफिसर्स बन चुकी है, दैट इज़ नॉट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह आईएई का चार्टर देख लें तो उसका मकसद यही लगता है कि पूरी दुनिया में पुरअमन इस्तेमाल के लिए छोटे ममालिक को भी जो है वो एटमी टेक्नोलॉजी का हुसूल मुमकिन बनाया जाए, न सिर्फ मुमकिन बनाया जाए बल्कि उसको कोऑपरेट किया जाए, कोऑपरेशन भी नहीं है, प्रोवोक किया जाए, उसे उभारा जाए, उसे कहा जाए कि यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, उसे कहा जाए कि अपनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपनी यंग लॉट लेके आओ जो ऐसे रिसोर्सेज पैदा कर सके कि एटमी टेक्नोलॉजी में नित नए जो फॉर्मूलेज हैं वो सामने आ सकें और उन फॉर्मूलों की रोशनी में आम आदमी की जिंदगी आसान बन सके। ये उसके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो मैं कल देख रहा था उसके अंदर लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं कि जो इदारा ये कह रहा है अपने किसी मुल्क को कि आप टेक्नोलॉजी का सिर्फ उसूल ना लें बल्कि अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ऐसे तलबा पैदा करें, ऐसी नौजवान क्यादत पैदा करें जो एटमी टेक्नोलॉजी के पुरामन हुसूल में मजीद मुताला करे, स्टडी करे और ऐसे नित नए नजरियात सामने लेके आए जिसमें इंसानियत की फैला हो, बहबूद हो और पूरी दुनिया में अमन कायम किया जा सके और स्पेसिफिकली उस मुल्क के अवाम के लिए और उस खित्ते के अवाम के लिए कुदरती वसायल तक रसाई को आसान बनाया जा सके। अब वो चार्टर देख के और आलमी इदारों का रवैया देख के मुझे दोगलापन और मुनाफकत बिल्कुल वाजे नजर आ रही है कि लिखा हुआ किताब में कुछ और है कि आप तावन करें लेकिन आप सामने आके पाबंदियां लगाते हैं। तो कहते हैं ना, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तो अमेरिका का, आईएई का, एनपीटी का ये रवैया, ये दोगला है, ड्यूअल क्राइटेरियाज हैं और दुनिया को इनका चार्टर पढ़ के और इनके एक्शंस देख के अब ये अंदाजा हो गया है कि अमेरिका खुली मुनाफकत का खेल खेल रहा है और वो सिर्फ बारूद फैलाने के लिए ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम को जो है वो प्रोपिगेट कर रहा है और मिसगाइड कर रहा है।
अच्छा अब्बासी साहब, पाबंदियों का जहां तक सवाल है, ये दुनिया ने भी देख लिया है, अमेरिका ने भी देख लिया है, सारी दुनिया के सामने है, ईरान पर जैसे जैसे पाबंदियां बढ़ती गई हैं, तमाम मैदानों में आम तौर पर और ख़ास तौर पर एटमी मैदान में ईरान की पेशरफ्त बढ़ती गई है। ईरान 3.5% यूरेनियम अफजूदा कर रहा था, पाबंदियां सख्त की गई, इसकी सतह बढ़ गई। ईरान को उन्होंने न्यूक्लियर मेडिसिन देने से इनकार कर दिया। ईरान के मेडिकल तहकीकाती रिएक्टर के लिए ईंधन जिसका मुआहदा था और जो फराहम करना आलमी बिरादरी का, IAEA का और एटमी ताकतों का फ़र्ज़ होता है, वो इन्होंने देना बंद कर दिया। ईरान ने मजबूर होकर 20% तक यूरेनियम को अफजूदा कर लिया। ईरान मुसलसल एटमी मैदान में पुराने एटमी मकासद के लिए मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। अमरीका और उसके इत्तेहादी ये देख रहे हैं कि उनकी लगाई हुई पाबंदियां न सिर्फ ये कि ईरान की तरक्की और पेशरफ्त रोकने में नाकाम रही हैं, बल्कि इनके सबब ईरान को ज़्यादा तरक्की और पेशरफ्त का मौका मिला है। इसके बावजूद वो पाबंदियों पर मुसिर हैं, क्यों?
बहुत गहरा और बहुत गहराई वाला सवाल आपने किए डेप्थ में जाके। इसको समझने से पहले एक चीज़ ये देख लें कि अमेरिका सऊदी अरेबिया पे पाबंदियां कभी क्यों नहीं लगाता या उन्हें कोई चीज़ देने से इनकार क्यों नहीं करता। इसलिए कि सऊदी अरेबिया के पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, उनके पास वो लॉट नहीं है, वो जानदार मजबूत दिमाग और एहसाब वाली नौजवान क़यादत नहीं है जो क़यादत ईरान के पास है। ये होती है लीडरशिप की नर्सरी। मैंने आपके कई प्रोग्राम्स के अंदर शुरू में ये कहा था कि ईरानियन नेशन के अंदर जो मैंने करीब से एक चीज़ देखी है, जो इंटरनेट पे उनकी बहुत सारी चीज़ें कल्चर को स्टडी किया है, मुझे एक चीज़ बड़ी वादे नज़र आ रही है, जो डिटर्मिनेशन जिसे आप अरेबिक के अंदर या उर्दू में इस्तेकामत कहते हैं, इस्तिकलाल कहते हैं, जो डिटर्मिनेशन और जिस इस्तिकलाल की भट्टी से इमाम खमीनी ने इस नेशन को गुजारा है, उसके अंदर निसफ सदी लग गई, वो डिटर्मिनेशन मुझे आज तक ईरान के अंदर नज़र आ रहा है, उसकी कौम के अंदर। ये वो बुनियाद है, बुनियादी पिलर है इस्तिकलाल का, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि इसको मजीद टेस्टिफाई करो। तो आपको पता है कि स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है तो जब उसे आप छोड़ते हैं तो उससे डबल प्रेशर में वो वापस उभर के आता है। वो कहते हैं ना, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाएंगे। तो ईरान की मिसाल ये है कि जितना उसे दबाया जा रहा है, उसकी मिसाल स्प्रिंग की तरह है, वो उतना ही उभर रहा है। इसलिए कि दबाने से ईरान की जौहरी सलाहियतें, उसका ब्रेन, टैलेंटेड ब्रेन, देखें ये टैलेंटेड ब्रेन वो ब्रेन है कि जो किसी मुल्क का असासा होता है। मैं देखता हूं कि ईरान के 20 साल से लेकर 40 और 45 साल के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और उसकी यूथ, वो हर फील्ड के अंदर इस वक्त मौजूद है। तो जिस कौम का नौजवान दिमाग उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर शामिल हो, यंग ब्लड उसकी तरक्की के अंदर शामिल हो, उसके अमन के अंदर शामिल हो, उसकी वहादत और यूनिटी के अंदर शामिल हो, दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। अमेरिका इस जोम में है कि शायद ईरान किसी एक ऐसी स्टेज पर आके कोई ऐसी बात कर देगा या ईरान का रिएक्शन ऐसा होगा कि जिससे हम फायदा उठाएंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन इमाम खमेनी की लीडरशिप ने उन्हें पेशेंस सिखाया है, सब्र सिखाया है। और यह मैं बहुत जोर दे के शिद्दत से बात करूंगा कि जितना ईरान को प्रोवोक किया जा रहा है इमोशनली कि ये जज्बाती हूं, वो जज्बाती नहीं हो रहे, इसलिए कि उनकी स्टडी के अंदर, उनके नजरियात के अंदर जहां पे इस्तिकामत है वहां पे सब्र भी है, और जहां पे सब्र है वहां पे अमन भी है। तो ये पूरी दुनिया आंखें खोल के और उनका ब्रेन और उनकी इंटेलेक्चुअल सोच में पड़े हुए हैं कि किस तरह की कौम है इस खित्ते अर्ज पर कि जिसे दबा रहे हैं वो रिएक्ट नहीं कर रही, वो इमोशनल नहीं हो रही, वो मुश्तैल नहीं हो रही। तो ये क्या सब्र, क्या चीज है कि जो इन्हें मजीद कुंदन बना रहा है? तो ईरान के अंदर वो चीज, वो क्वालिटीज हैं जिससे न सिर्फ अमेरिका घबरा चुका है, इसराइल घबरा चुका है। और आपको पता है सांप की जब मौत आती है वो शहर का रुख करता है। तो अमेरिका के, मेरे ख्याल में, इसराइल के पॉलिसीज के एंडिंग के आखिर के अदवार हैं, इसीलिए वो अपना इश्तहाल और गुस्सा ज्यादा ज्यादा ईरान पर पाबंदियां लगाकर उसको जाहिर कर रहे हैं। बाकी उनके पास ना कोई वीएन है ना पॉलिसी है, वो सऊदी अरेबिया को अपना असलाह बेच रहे हैं और सऊदी अरेबिया के जरिए सीरिया को कंट्रोल कर रहे हैं। वो चाहते हैं किसी तरह ईरान भी सीरिया बन जाए, ऐसा नामुमकिन है। इसीलिए ईरान इंडिपेंडेंट है, वो सॉवरेन कंट्री है, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, वो पुरमन मकासद के लिए मजीद से मजीद टेक्नोलॉजिकल थ्योरी सामने लेके आ रहा है। मेरे ख्याल में ये टर्की के लिए, पाकिस्तान के लिए और दीगर मुसलमान ममालिक के लिए एक ऐसी प्रेसिडेंट है जो रोल मॉडल की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। और नाज़रीन, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहाँ हिंदुस्तान के सीनियर तजिया निगार और स्कॉलर प्रोफेसर तुलसी राम साहब मौजूद हैं। तुलसी राम साहब आधा अर्ज है। जी तुलसी राम साहब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं?
जी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फायदा का जहां तक सवाल है कि इस समय जो इनर्जी जिसको कहते हैं, खास करके ये जो बिजली उत्पादन के क्षेत्र में, क्योंकि उसी से कल कारखाने चलते हैं और एक तरह से सारा देश चलता है, उससे उससे आवागमन के साधन हैं, जैसे ट्रेन हैं, ट्राम हैं, तमाम ये सिस्टम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो कल कारखानों के लिए होता है। तो जहाँ तक न्यूक्लियर इनर्जी का के फायदे का सवाल है, तो जी ये सोशल ओरिएंटेड चीज़ें हैं या जो समाज को आगे ले जाने की बात है, वो उसके लिए तो बहुत ही कामगर है।
जी
लेकिन अगर न्यूक्लियर एनर्जी से घातक हथियार बनाए जाएं और फिर दूसरे देशों को, जिनके पास ये न्यूक्लियर पावर हैं जो लोग, वो धमकी दें अपने स्वार्थों के लिए या अपने फॉरेन पॉलिसी के हित में, जैसा कि आजकल हो रहा है, ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। जी
जी तुलसीराम साहब, एनपीटी और आईएईए का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि एटमी असलहे के फैलाव को रोका जाए और एटमी टेक्नोलॉजी का जो पुरान इस्तेमाल है इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानों की भलाई के लिए जो काम है उनको फ़रोग दिया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। इस सिलसिले में दुनिया में कितना काम हुआ है?
इस सिलसिले में तो काम नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका के जो समर्थक देश हैं वो खुले आम उनको तो ये अलाउ कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ईरान से खफा इस बात पर है कि 79 का जो रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद उनके जो डिप्लोमेटिक स्टाफ थे वो उनको बंधक बनाया गया और अमेरिका उसको छुड़ाने के लिए सैनिक हस्तक्षेप किया, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो वह एक बड़ा उनको धक्का पहुंचा है पूरे अमेरिकी राष्ट्र को, और इस वजह से ईरान जो है उसके बारे में वो कोई न कोई बहाना करके उस पर वो हमला करने की तैयारी में हैं, जैसा कि इराक पर किया, अफगानिस्तान पर किया। और वो बहाना उनको मिला है ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो ईरान बना रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, वो साफ साफ घोषित कर चुके हैं। इवन आईएई के सदस्य भी वहाँ पर आ करके वो देखे हैं, उसकी निगरानी किए हैं, और कहीं कुछ मिला नहीं। तो यह एक, जैसे इराक पर हमला किया था अमेरिका ने, तो ये कहा कि उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि वो आम जनता को एकदम तबाह करने वाले हथियार हैं। वहाँ से यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव साइंटिस्ट वो आए इराक में, देखे, उनको कुछ भी नहीं मिला कि ऐसा नहीं है। फिर भी वो बहाना ले करके जब न्यूयॉर्क टावर पर जब तालिबान ने हमला किया तो उन्होंने ये कहा कि ये अलकायदा कोई सपोर्ट करते हैं। वो एक बहाना वो इस तरह का था कि वो जो कहते हैं कि एक शेर था, एक बकरी पानी पी रही थी, तो उसने कहा शेर ने कि तुमने झूठा कर दिया, तो उसने कहा मैंने पानी पिया ही नहीं, तो शेर ने कहा कि तू नहीं पिए तो तुम्हारे बाप ने पिया होगा। तो इस तरह का बहानाबाजी ले करके अमेरिका जो है ईरान को धमका रहा है। और न्यूक्लियर एनर्जी का इशू या न्यूक्लियर पावर का ये जो संबंध है वो उसको वो प्रचारित कर रहे हैं कि ईरान जो है वो एटम बम बना रहा है या हथियार बना रहा है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके। यह एक बिल्कुल छलावा है और ये गलत आधारों पर ये बात अमेरिका कर रहा है। और मूल उद्देश्य वही है कि जैसा कि मैं कह रहा था कि 79 में जो उनको धक्का लगा, उसके पहले तो शाह ईरान के जो थे वो अमेरिका की हर बात मान लेते थे। वो 43,000 सैनिक भी अमेरिकी ईरान की धरती पर था और तमाम मिसाइलें वो सोवियत संघ की तरफ करके वो लगाए हुए थे, तो हर बात वो मानता था। और प्लस तेल की सप्लाई जो है वो रेगुलर वो करते थे। तो उन्होंने रेवोल्यूशन के बाद देखा कि ईरान की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में वो ईरान उभरा है पूरे गल्फ रीजन में। और दूसरी बात यह कि सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग जो हैं पूरे गल्फ रीजन में वो ईरान में ही हैं, और ख़ास करके महिलाओं को जो प्रमुखता दी गई है वहाँ हर क्षेत्र में, और वो ऐसा किसी भी इस्लामिक मुल्क में आज तक नहीं हुआ है महिलाओं का जहाँ तक सवाल है। तो ईरान हर क्षेत्र में एक नई राह बनाया है और नई सोच पैदा की है। और निश्चित रूप से इतिहास देखा जाए ईरान का तो शुरू से ही वह एक बहुत ही कल्चर्ड कंट्री रहा है। वहाँ का साहित्य देख लीजिए, वहाँ के त्यौहार या दूसरी चीज़ें जो कल्चरल जिसका संबंध है, तो उस मायने में ईरान एक बहुत ज़्यादा प्रगतिशील राष्ट्र है पूरे अरब वर्ल्ड में देखा जाए तो। तो इसकी वजह से उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका हमेशा, जो देश अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानते हैं उसको वो रोग नेशन कहते हैं, और इसी संदर्भ में ईरान को भी उन्होंने रोग नेशन घोषित किया है, सीरिया को भी किया है। तो तमाम इस तरह से देखा जाए कि अमेरिका के छाया में जो देश नहीं रहना चाहता है कोई न कोई बहाना करके वो जो है उस पर आक्रमणकारी एक भूमिका तैयार करते हैं। और जाहिर है कि इस समय ईरान और सीरिया ये दो मेन उनके टारगेट हैं, कि क्योंकि ये दोनों सरकारें अमेरिका के डिक्टेशन को नहीं मानती हैं। तो ये एक स्थित अजीब सी अमेरिका ने पैदा किया है। दुर्भाग्यवश अमेरिका जो है वो यूनाइटेड नेशंस पर अपना प्रभुत्व कायम करने में सफल हो चुका है, इसीलिए अमेरिका जो कुछ करना चाहता है वह जो है यूनाइटेड नेशंस से, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल से ये पास करा लेता है। और पहला उनका सबसे खतरनाक भूमिका इस तरह से आती है कि एक ऐसे मुल्कों पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की, जैसे ईरान पर लगा दिया है। और भारत के साथ अनेक समझौते ईरान के थे, पाइपलाइन का सवाल था और समझौतों बड़े महत्वपूर्ण समझौते थे वो। ये भी दुर्भाग्य है कि भारत सरकार उस पर झुक गई है और कमोबेश वो अमेरिका के ही एक तहत जो है उनकी पॉलिसी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज भारत में आया है, और भारत में जो लोग शांति प्रेमी लोग हैं जो ईरान को एक दोस्त के नाते देखते हैं उनके लिए बड़ा निराशा पैदा हुई है। तो एक खतरनाक डेवलपमेंट जो है वो अमेरिका के प्रभुत्व के सिलसिले में ये भी है कि भारत जैसे बड़े देश उनकी पॉलिसी को कमोबेश सपोर्ट कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर तुलसीराम साहब। और नाजरीन, हम आपको ये बता दें कि सियासी उम्र के माहिर हुसैन कनानी मुकद्दम साहब बाज़ वजूहात की बिना पर शायद ट्रैफिक में फंस गए हैं, प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी खिदमत में गुज़श्ता एक साल के दौरान एटमी मैदान में ईरान की पेशरफ से मुतालिक एक रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुख्तलिफ शोबों में खातिर खा तरक्की की है, जिसका एतराफ आलमी इदारे भी करते हैं। जौहरी शोबे में भी ईरान की तरक्की नुमाया है, ताहम मगरबी सियासी हल्के और मीडिया की कोशिश ये रहती है कि एटमी शोबे में ईरान की तरक्की को एटम बम बनाने की तरफ इस मुल्क की पेशकदमी के तौर पर पेश करें, जबकि ईरान ने जौहरी टेक्नोलॉजी के गैर फौजी इस्तेमाल और गुनागु फवायद पर तवज्जो मरकूज करके इस शोबे में तरक्की करने के साथ ही दीगर शोबों के लिए इस टेक्नोलॉजी के इफादी पहलुओं का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। ईरान ने जौहरी टेक्नोलॉजी के गैर फौजी इस्तेमाल को नुमाया करने के लिए 20 فروردین مطابق 9 اپریل کو ایٹمی ٹیکنالوجی کا قومی دن قرار دیا ہے اور ہر سال اس دن جوہری شعبے سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا ہے اور مختلف منصوبوں اور مراکز کا افتتاح ہوتا ہے۔ اس سال ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن پر صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے جدید ایٹمی پیش رفت اور نئے پروجیکٹوں سے استفادے کے احکامات صادر کیے۔ صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد نے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جن منصوبوں کا افتتاح کیا ہے ان میں صوبہ یزد کے شہر تفت میں روٹرون کے نام سے موسوم انڈسٹریل الیکٹرانک انہینسر، ساغند کی یورینیم کی دکانیں اور شہید رضائی نژاد یلو کیک پروڈکشن کمپلیکس سے متعلق منصوبے ہیں۔ روٹرون دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ انڈسٹریل انہینسر ہے جسے مکمل طور سے ایرانی سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات اور تجربات کی روشنی میں تیار کیا ہے۔ اسے جوہری ٹیکنالوجی، طب، پولیمر انڈسٹریز، غذائی صنعت، کار سازی، پانی اور نکاسی کے پانی کو صاف بنانے، اسپتالوں کے فضلے کی ری سائیکلنگ، پائیدار ٹائروں، نہ جلنے والے شیشوں، لکڑی اور دھاتوں کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یزد کی ساغن سائٹ قدرتی ذخائر سے یورینیم حاصل کرنے کا مختلف مراحل کا مبولتا ثبوت ہے اور اس کارخانے میں موجود تنصیبات کے ذریعے زمین کی 350 میٹر گہرائی سے یورینیم نکالنے کا کام کیا جاتا ہے۔ ساغن کی کانوں سے نکالا جانے والا خام یورینیم شہید رضائی نژاد کمپلیکس میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں مختلف مراحل طے کرنے کے بعد اس کو یلو کیک میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ شہید رضائی نژاد یلو کیک کمپلیکس میں سالانہ 60 ٹن یلو کیک تیار کرنے کی گنجائش موجود ہے اور یہ دراصل ایران میں یلو کیک تیار کرنے کی پہلی بھٹی ہے اور اس کے افتتاح کے نتیجے میں ایران یلو کیک برآمد کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ صدر مملکت نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 5 نئی نیوکلیئر دواؤں کی تیاری کے منصوبوں کا افتتاح بھی کیا۔ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہیں ایٹمی شعبے میں ترقی حاصل ہوئی ہے لیکن ان کی یہ ترقی کسی اور ملک کی دین رہی ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ چین کو ایٹمی شعبے میں سوویت یونین سے مدد ملی۔ اسی طرح دوسرے بہت سے ممالک ہیں جنہیں خاص سیاسی حالات اور بڑی طاقتوں کے درمیان جاری رسہ کشی اور رقابت کی بنا پر ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑی مدد ملی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جوہری شعبے میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا بلکہ اس کی پیش رفت کے عمل میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ ایٹمی پروگرام کو بہانہ بنا کر ایران پر گوناگوں پابندیاں عائد کر دی گئیں، تاہم اس کے باوجود ایران نے اس شعبے میں ترقی کی۔ یہ بھی ایران کی قابل تعریف اسٹریٹجی ہے کہ اس نے اپنے جوہری پروگرام کو فوجی مقاصد کی جانب مڑنے نہیں دیا۔ دوسرے بہت سے ممالک کے بارے میں تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جوہری ٹیکنالوجی ملنے کے بعد زیادہ توجہ جوہری ہتھیار بنانے پر مرکوز کی، اس کے شہری استعمال کو ثانوی حیثیت دی۔ بنابراہ اسلامی جمہوریہ ایران نے عملی طور پر ثابت کیا کہ جوہری ٹیکنالوجی ضرور ہونا چاہیے لیکن جوہری ہتھیار نہیں بلکہ پرامن مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایران کا یہ مشہور نعرہ بھی ہے کہ جوہری ٹیکنالوجی سب کے لیے، ایٹمی ہتھیار کسی کے لیے نہیں۔
جی ناظرین، ایٹمی میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پیش رفت و ترقی سے متعلق رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو۔ عباسی صاحب، ایٹمی ٹیکنالوجی کو بہت ہی پیچیدہ اور پیش رفتہ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے اور عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ کم سے کم اس ٹیکنالوجی کے میدان میں کوئی بھی ملک مغرب کے تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ پرشین گلف میں، مشرق وسطی میں ایسے ممالک بھی ہیں جنہیں امریکہ کی دوستی پر فخر ہے، جو امریکہ پر اس حد تک انحصار کرتے ہیں اور اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ان کے حکام شاید پانی پینے سے پہلے بھی وائٹ ہاؤس سے اجازت لینا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ بھرپور تعاون اور بھرپور سرپرستی امریکہ کی انہیں حاصل ہے۔ ایک طرف وہ ممالک ہیں اور دوسری طرف ایران ہے جہاں انقلاب آنے کے بعد سے ہی امریکہ کی پابندیوں، اس کی دھمکیوں اور اس کی طرف سے کھڑی کی جانے والی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ترقی کے میدان میں اس ریجن کا کوئی بھی ملک جو امریکہ سے بہت زیادہ وابستہ ہے ایران کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟
دیکھیں، बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और करंट सिनेरियो में मैं देखते हुए जो आपने रिपोर्ट दिखाई है और जिस तरह मैं देखता हूँ ईरान की प्रोग्रेस एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल में और दीगर प्रोजेक्ट्स में, और उसमें मेडिसिन का जो इस्तेमाल है, चार बड़ी दवाओं का इस्तेमाल है। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूं कि इस वक्त दुनिया के 11 बड़े ममालिक हैं जो जो न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो बड़ी तादाद में बनाते हैं, तो ईरान ये 12वां मुल्क है, 187 में से 12वां मुल्क होने का इसे एदाद हासिल हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 11 ममालिक जिसमें फ्रांस है, बरतानिया है, जर्मनी है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इटली है, ये बड़े बड़े ममालिक हैं, ये सुपर पावर्स हैं, ये वीटो का इख्तियार रखते हैं, इनके पास सोर्सेज हैं, इनके पास जो है वो वसाइल है, पैसा है, और इन पर कोई सैंक्शंस नहीं है। ये जहां से चाहें, जब चाहें, कोई मक्खी भी उठाना चाहें वो उठा सकते हैं, इनको आज़ादी है। इतनी लिबर्टी के अंदर इन 11 ममालिक का अपने कोलैबोरेशन के साथ मेडिसिन को बनाना और ईरान का तने तनहा आइसोलेशन की कैफियत में मेडिसिन बनाना, दिस इज़ एन ओपन चैलेंज, और मैं इसे मेरिकल से कम नहीं कहूँगा। ये मैं इमोशनल होके या आपके फेवरेटिज्म में बात नहीं कर रहा, ये मिरेकल ऑफ ईरानियन साइंटिस्ट है, ईरान के साइंसदानों का और उस टैलेंटेड ब्रेन का मौजजा है आज के दौर के अंदर कि इतनी सैंक्शंस में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स और उसको भी पीसफुली लेके जाना, ये रोल मॉडल है। मैं जितनी चीजें पिछले अरसे से पीट रहा हूं, कह रहा हूं कि ईरान के साथ पाकिस्तान का कोलैबोरेशन, अफगानिस्तान का, टर्की का और इंडिया का, ये रीजन पूरा शामिल हो जाए, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ईरानियन दिमाग हो जाए, पाकिस्तानी दिमाग हो जाए, यंगस्टर्स का जो लॉट है यूनिवर्सिटीज की, मैं कह रहा था ना कि आपस में वफूद का तबादला हो, यहां के तलबा ईरान जाएं, ईरान के पाकिस्तान में आए, यहां के टर्की जाएं, फिर इंडिया जाएं, ये आपस में एक दूसरे को स्टडी करें, तजुर्बात से इस्तेफादा करें। अमेरिका यही तो नहीं चाहता कि जिस दिन इस खित्ते में ये 5-6 ममालिक सर जोड़ के बैठ गए और एक दूसरे से एक एक्सपेरिमेंट से इस्तेफादा किया, उस दिन के बाद ये 5 ममालिक पूरी दुनिया के लिए अमन में, तरक्की में, खुशहाली में, टेक्नोलॉजी में रोल मॉडल होंगे। तो मेरे ख्याल में अगर सर जोड़ के न भी बैठें तो तने तनहा ईरान ने वो काम कर दिया है आज के दौर के अंदर और मगरबी ताकतों के मुंह पे तमाचा मार दिया है कि एटमी टेक्नोलॉजी रहमत है। और अगर आप किसी चीज को ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ, अच्छे अंदाज में, पॉजिटिव वे में तलाश करें तो कोई गलत काम भी है तो उसमें से भी आप अच्छाई निकालने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर एक चीज के 20% नुकसान हैं तो 80% फायदे भी हैं। तो इंसानियत की खिदमत किसने की? ईरान ने। इंसानियत की तबाही का काम किसने किया? अमेरिका ने। इंसानियत को पुरमन मकासद के लिए टेक्नोलॉजी को मुतारिफ किसने करवाया? ईरान ने। इंसानियत की गली सड़ी लाशों पर बारूद किसने गिराया? अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों ने। तो दुनिया को जान लेना चाहिए कि एक तरफ ईरान का पीसफुल एटमी टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है और दूसरी तरफ अमरीका की वैश्याना टेक्नोलॉजी, दरिंदगी और दहशतगर्दी का वो बारूद है जो दुनिया में फैल रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर इसको मुख्तसरन में कहूं तो दरूद और बारूद की जंग है। अमेरिका बारूद फैला रहा है, ईरान दरूद फैला रहा है। देखना यह है कि बारूद की बू को दरूद की खुशबू किस तरह मिटाती है। तो वक्त आने वाला है कि ईरान का दरूद और सलाम और ईरान की पुरमन एटमी टेक्नोलॉजी वो एक पुरमन दरूद बनकर इस बारूद की बू को मिटा देगी और पूरी दुनिया के अंदर अमन और मोहब्बत की खुशबू फैलेगी और इंसानियत इन बड़े बड़े थानेदारों के चुंगल से निजात हासिल करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब जी। प्रोफेसर तुलसीराम साहब, जनाब तमाम तर मुश्किलात और रुकावटों के बाद भी, पाबंदियों के बाद भी, ईरान ने ख़ास तौर पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मैदान में जो तरक्की की है और जहां आज है, क्या उसके बाद भी ये कहा जा सकता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की अमेरिका और वेस्ट की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है?
नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बल्कि अमेरिका, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, वो अपने पिट्ठू देशों को ही देता है, अन्यथा वो तो अपने बनाए हुए माल को सिर्फ बेचना चाहते हैं। हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी अमेरिका है और हथियारों का उन्हीं देशों को वो देता है जो कि जाहिर है कि उनके तहत काम करना चाहें, उनकी फॉरेन पॉलिसी को जस्टिफाई करें, और जो लोग नहीं करते हैं उनके खिलाफ वो दुश्मनी भी एक तरह से तैयार करते हैं कि जो उनके पिट्ठू देश हैं, वो जो अमेरिका के दूसरे वो अमेरिका विरोधी देश हैं, उनके खिलाफ भी वो अपनी भूमिका निभावें। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जो पिछले दिनों अरब मुल्क में जो बहुत सारे वो विद्रोह हुए, ट्यूनीशिया में, यमन में और लीबिया में, लीबिया में तो कर्नल गद्दाफी को जिस तरह से मारा गया हम सब ने देखा, तो इजिप्ट में उन्होंने किया, तो वो सोचते थे और उसका इस्तेमाल एनजीओ के थ्रू करते थे। तमाम एनजीओ जिसको अमेरिकी बहुत मदद देता था, उन्हीं एनजीओ को फिर हथियार देने लगा अमेरिका, और जगह जगह सत्ता परिवर्तन हुआ। अमेरिका ने सोचा कि ये सारे हमारे पिट्ठू देश बन जाएंगे, लेकिन संजोग बस ये उल्टा साबित हो रहा है। वो चाहे इजिप्ट की राजनीति हो, चाहे लीबिया में जो लोग हैं वो लोग, या यमन में, ट्यूनीशिया में, एक अमेरिकी विरोधी लहर तो वो पैदा हो गई है राजनीतिक तौर पर। तो ये टेक्नोलॉजी का जो मसला है, अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि किसी डेवलपिंग मुल्क को टेक्नोलॉजी दे, या जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो रखते हैं उनको वो दे। और इस बहाने जो आरोप लगाते हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर आर्म्स बना रहा है, बम बना रहा है, यह एक बहाना है ईरान को तबाह करने का। दूसरी चीज और एक है कि अमेरिका को जिस तरह से इराक को बर्बाद करके सारी तेल कंपनियों पर अमेरिका के राजनेता लोग कब्जा कर लिए हैं, और उसी तरह से वो सोचते हैं कि ये बहाना ले करके अमेरिका को, ये ईरान को बर्बाद करे और उसके तेल कुओं पर कब्जा कर ले। ये हर जगह अमेरिकी इस तरह से कर रहे हैं। जाहिर है कि अमेरिका जो है वो ट्यूनीशिया नहीं है, वो लीबिया नहीं है, या इराक नहीं है। ईरान जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह से कर रहा है, अभी अब्बासी साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अपने इंटेलेक्ट के बल पर ईरान जो है वो कर रहा है। और हमेशा से मैंने देखा है कि ईरान एक शांतिप्रिय देश रहा है और अत्याचार का विरोध वो करता रहा है। उसी सिलसिले में शाह ऑफ ईरान का पतन हुआ अत्याचार के विरोध में, और एक तब से जो ये मुल्क प्रोग्रेस किया है हर क्षेत्र में, वो एक एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र की का उदाहरण है ईरान इस संदर्भ में। और अमेरिका का जो शांति का नारा है कि वो, और डेमोक्रेसी का खास करके, कि वो जहां डेमोक्रेसी नहीं है वो कहते हैं वहां डेमोक्रेसी लाना है। हकीकत यह है कि जहां प्रो अमेरिकन डेमोक्रेसी नहीं है उस देश को वो डिक्टेटर कहते हैं। इसी संदर्भ में ईरान को भी वो उसी कड़ी में रखते हैं। और जहां तक न्यूक्लियर वेपन के बल पर, ये तो एक जो है ब्लैकमेल का हथियार है न्यूक्लियर वेपन, और मैं नहीं समझता कि कोई भी देश आज के जमाने में हिम्मत करेगा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो ब्लैकमेल का हथियार है, वो डराने का हथियार है इंडिपेंडेंट मुल्कों को, तो इस तरह से वो अमेरिका ये पॉलिसी अपनाए हुए है। और ईरान जो है वो बिना किसी की परवाह किए कि वो अमेरिका क्या कर रहा है या कैसा चाहता है, वो अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका ईरान से बहुत खफा है। और ईरान का और सीरिया की बात छोड़ दिया जाए, मैं साउथ कोरिया की बात करूं और नॉर्थ कोरिया की, तो जिस तरह से वो साउथ कोरिया को वो बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं, वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो अमेरिका सप्लाई कर रहा है, कोई उनकी इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर खोज नहीं है उस हिसाब से। लेकिन वहीं पर उत्तर कोरिया ने चूंकि एटम बम बना लिया है और वो खुलेआम उसकी घोषणा भी कर रहा है उत्तर कोरिया जी, तो अमेरिका क्यों उत्तर कोरिया पर, यद्यपि उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शन उस पर लगाया है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि उत्तर कोरिया पर आक्रमण करें, क्योंकि उसके पास भी न्यूक्लियर आर्म्स हैं। अब जो देश न्यूक्लियर आर्म्स नहीं रखते हैं वो,
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं रहा। बहरहाल ईरान का ये स्लोगन काबिले तवज्जो है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सबके लिए और जौहरी हथियार किसी के लिए भी नहीं। इसी के साथ प्रोग्राम اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.